أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اے بني إسرائيل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی. وعوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اور میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وعیا فرحبون، اور مجھ ہی سے ڈرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آیہ نمبر 40 کریں گے سورہ بقرہ کی انشاءاللہ تعالی. اب یہاں سے ایک نیا ٹاپک، ایک نیا رکوع شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل کا ٹاپک. بنی اسرائیل یہودیوں کو کہتے ہیں. یہاں پہ بنی اسرائیل کی تھوڑی سی ہسٹری سمجھ لینا ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، وہ جن کے ساتھ حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، اور انہی حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا. اسرائیل ہبریو میں عبداللہ کو کہتے ہیں. اسرا مینس قیدی یا عبد، اور ایل ہبریو میں اللہ کو کہا جاتا ہے، تو اسرائیل کا مطلب عبداللہ. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن کا ذکر سورہ یوسف میں آتا ہے. انہی 12 بیٹوں اور ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں ہزاروں سالوں تک ہر نسل میں نبی اور رسول آئے. حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، وہ سب کے سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے. اب یہودی بھی اپنے آخری پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، اور انہیں امید تھی کہ یہ آخری پیغمبر بھی انہی کے سلسلے میں سے آئیں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد رسول تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور یہ بات یہودیوں کو سخت ناگوار گزرے. یہاں پہ بنی اسرائیل کا اتنی ڈیٹیل سے ذکر اس لیے آیا ہے کہ سورہ بقرہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. مدینہ میں تقریباً 5 سے 6 ہزار یہودی 3 قبیلوں کی شکلوں میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. تو اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، تو ایک نئی آڈینس بنی اسرائیل یعنی یہودی بھی تھے، اور یہ قرآن میں نزول کے اعتبار سے پہلی بار ان سے خطاب ہو رہا ہے. ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ان کو ان کی ماضی کی غلطیاں یاد کروائی جا رہی ہیں. دوسری بڑی وجہ اس وقت بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کی یہ تھی کہ اب تک مسلمان ٹارچر، پستی اور مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے مکہ میں. اب پہلی دفعہ مسلمان ایک امت کی، ایک قوم کی شکل اختیار کرنا شروع ہوئے تھے. اس پوائنٹ میں مسلمانوں کو ایک قوم کی کیس سٹڈی بتانا ضروری تھا کہ ماضی کی امتوں کو جب خلافت کی ذمہ داری دی گئی، ان کی طرف ہدایت بھیجی گئی، تو ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں. اور اب جب مسلمان ایک قوم اور اللہ کے خلیفہ کی شکل اختیار کر رہے ہیں، جب ان کی طرف ہدایت آئی ہے، تو انہوں نے کن چیزوں سے بچنا ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اسی سوراخ میں چلے جاؤ گے. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہود اور نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7320. اور یہ ساری تاریخ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بتائی ہے، وہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے، تاکہ ہم اپنے حال کو اور اپنی امت کے حال کو ان کے ساتھ کمپیئر کر سکیں. بنی اسرائیل کی کہانی میں ہمارے لیے بحیثیت قوم، بحیثیت امت تو بہت سارے سبق ہیں ہی، اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم اکثر جب قرآن میں پچھلی قوموں کے گناہوں کے ذکر پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو قوموں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں انفرادی طور پر کیا فائدہ مل سکتا ہے. لیکن ہم اصل میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر قوم افراد ہی کا تو مجموعہ ہوتی ہے. اگر ایک برائی ایک قوم کے بہت سے افراد میں پیدا ہو جائے، تو وہ قوم کی برائی بن جاتی ہے. اس لیے ایک قوم کی اصلاح کے لیے ہر فرد کو اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے، تبھی کوئی قوم اللہ کے عذاب سے بچ سکتی ہے. اس لیے ہمارے لیے انفرادی طور پر بھی اس ٹاپک میں بہت سے لیسنز، بہت سے سبق ہیں. سورہ انعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. اب اگلے 10 رکوع تک یہی بنی اسرائیل سے خطاب رہے گا، اور یہی ٹاپک چلے گا. तो अब आयत नंबर 40 शुरू करते हैं। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो वो नेमत जो हमने तुम पर इनाम फरमाई। और वो क्या नेमत है? मुसलसल हज़ारों साल तक उन पे नबूवत का सिलसिला चलता रहा और अल्लाह ताला ने उन्हें मुसलसल हिदायत भेजी रसूलों नबियों की सूरत में और किताबें अता फरमाई। इसके अलावा अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता की। आगे चलकर हम यही देखेंगे कि पूरा का पूरा टॉपिक ऐसे ही तरतीब दिया गया है कि अल्लाह ताला पहले बताते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्या नेमतें दी, क्या इनाम दिए, और फिर ये कि उस नेमत के बदले में उन्होंने क्या किया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वाउफू बी अहदी ऊफी बी अहदिकुम, तुम मेरे साथ किया हुआ अहद को पूरा करो और मैं तुम्हारे साथ किए हुए अहद को पूरा करूँगा। वाउफू का लफ्ज़ वाफाया से निकला है जिसका मतलब है पूरा या मुकम्मल करना। शायद उर्दू ज़बान में वफा, वादा वफा करना भी इसी लफ्ज़ से आया है, यानी अपना वादा पूरा करना। कुरान में आता है औफुल कैला इज़ा किल्तुम, यानी कि जब तुम नाप कर दिया करो तो पूरा नाप दिया करो। तवफ़ा का लफ्ज़ भी इसी रूट वर्ड से आया है और ये मरने के लिए इस्तेमाल होता है, मौत के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हम वफ़ात कहते हैं, यानी जब इंसान का वक्त पूरा हो जाए तो यतवफ़ाकुम मलकल मौत, यानी कि तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है मलकल मौत। एक आखिर क्या वादा था जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लिया था और उसके बदले में उनसे क्या वादा किया? इसमें उलमाए कराम की बहुत सी आरा हैं। मैं ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ हसन अल बसरी की राय, रहीमुल्ला की राय से, जिन्होंने कहा कि ये वो वादा है जिसका जिक्र सूरह मायदा की आयत नंबर 12 में आया है। अल्लाह ताला फरमा उसमें हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था और इसमें 12 नकीब मुकर्रर किए थे। बनी इसराइल के 12 कबीले थे और हर कबीले का अपना सरदार था, क्योंकि ना सिर्फ उनकी पॉलिटिकल और सियासी मामलात का बल्कि अखलाकी और मजहबी मामलात का भी निगरान था। फिर अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की। ये वो वादा है और वादे के मेन क्लॉज हैं जो उन्हें याद करवाया जा रहा है कि अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, अब उनको मानो और उनकी मदद करो। ये वो मेन वादा है जो अल्लाह सुबहाना व तआला ने उनसे लिया था। फिर इसी आयत में ये भी पता चलता है कि इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनसे क्या वादा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला उकफ्फिरन्ना अनकुम सय्यातिकुम, तो मैं यकीनन तुम्हारे तमाम बुराइयां, तुम्हारे तमाम गुनाहों को ज़ाइल कर दूंगा। वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगे। ये तो आखिरत का वादा था। सूरह मायदा ही में अल्लाह ताला दुनिया के बारे में भी फरमाते हैं, और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उन पर परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुई उनको कायम रखते तो इन पर रिस्क मी की तरह बरसता उन, और वो अपने ऊपर से और अपने पाँव के नीचे से खाते। यानी हिदायत पे अमल करने वालों के लिए दुनिया में भी रिस्क की फरावानी का वादा था। अब उनको दावत दी जा रही है कि एक और मौका है तुम्हारे पास, एक और हिदायत आ गई है तुम्हारे रब की जानिब से, अब अपना वादा पूरा करो। व ई या फरहबुन, और सिर्फ मुझ ही से डरो। जैसे ई या का आया था सूरह फातिहा में, यानी कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, इसी तरह ई या का मतलब है सिर्फ मुझसे। यहूदियों के आलिमों को अंदर से तो हकीकत मालूम थी कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आखिरी नबी हैं और ये किताब सच है, लेकिन उनको अपने इल्म पे बहुत गरूर था और उनको अपने अहले किताब होने पे भी एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। अब तक उनको सारे अरबों पे बरतरी हासिल थी। अब अगर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर तस्लीम कर लेते तो उनको जो बरतरी हासिल थी वो ख़त्म हो जाती, उनकी जो सुपीरियोरिटी थी वो ख़त्म हो जाती। इस सब का उन्हें डर था, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें याद करवाया कि इन बातों से ना डरो, सिर्फ़ अल्लाह से और उसके अज़ाब से डरो। फिर आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वा आमिनू बिमा अनज़लतु, और ईमान लाओ उस चीज़ पर जो मैंने तुम्हारी जानिब नाजिल फरमाई है, यानी कुरान। ये बात बनी इसराइल से इसलिए कही जा रही है क्योंकि अल्लाह पे और आखिरत पे तो वो पहले ही यकीन रखते थे। अब ईमान पूरा करने के लिए उन्हें कुरान पे ईमान लाना ज़रूरी था, और कुरान पे ईमान लाने का मतलब ये था कि उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानना ज़रूरी है, मुसद्दिकल लिमा मअकुम। और ये कोई अननोन किताब नहीं है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान पे ईमान लाओ जो तुम्हारी किताब यानी तौरात की तस्दीक करने के लिए आया है। वो तौरात को अल्लाह ताला की किताब कहते थे, कुरान भी अल्लाह ताला ही की किताब था। वो सिलसिला नबूवत पे ईमान रखते थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी थे। यहाँ तक कि तौरात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर मौजूद थी। कुरान में जिक्र आया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले यही यहूदी आखिरी पैगंबर के ज़हूर की दुआएं मांगा करते थे और उस नबी की बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि जिनकी पेशेन गोई तौरात में हुई है। फिर बहुत से अंबिया की कहानियां तौरात में मौजूद थीं और कुरान इन सब चीज़ों की तस्दीक करने के लिए आया था। होना तो ये चाहिए था कि यहूदी फ़ौरन इस किताब पे और आखिरी नबी पे ईमान ले आते। हिजरत के वक्त सहाबा कराम को भी यही उम्मीद थी कि हिजरत के फ़ौरन बाद मदीना में मौजूद यहूदी फ़ौरन इस्लाम की दावत को, कुरान को और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर लेंगे और इस दावत को खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग अल्लाह पे, किताबों पे, नबियों पे, योम आखरत पे पहले से ही यकीन रखते थे। लेकिन यहूदी जानते बूझते हुए भी अपने गरूर और अपनी हठधर्मी की वजह से ईमान ना लाए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तकूनु अव्वला काफिरिन भी, और तुम ही सबसे पहले इसका कुफ्र करने वाले ना बन जाओ। यानी तुमसे तो उम्मीद ये थी कि तुम सबसे पहले ईमान लाने वाले बनोगे। बी ही में जो ही आया है, यानी कि इसका कुफ्र करने वाले ना बन जाओ, इसका का दो मतलब हो सकते हैं। एक तो कुरान, यानी कि कुरान का कुफ्र करने वाले, या फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि उनका कुफ्र करने वाले ना बन जाओ। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तश्तरु बी आयाति समनन कलीनन व इया या फत्तकून, और मेरी आयात के इवज़ हकीर सी कीमत कबूल ना करो और सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो। बनी इसराइल के उलमा सारी हकीकत जानते थे, उन्हें किताब का मुकम्मल इल्म था और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचान गए थे। उन्हें तो बहुत अरसे से आखिरी नबी का इंतज़ार था, लेकिन जब तौरात की आयतें सच्ची हो रही थीं और आखिरी नबी आ गए थे, तो अब वो अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए अल्लाह की आयतें छुपाने लगे। किसी भी दीन में स्कॉलरशिप उलमा का एक तबका हमेशा ऐसा मिलेगा जो दीन को धंधा बना लेते हैं। अपनी दुकान चमकाना, अपनी मस्जिद, चंदे, ज़ाती मुफादात, दीन को सियासत के लिए इस्तेमाल करना, फतवे पैसों के एवज़ बेचना, फिर तावीज़ गंडे और दम दरूद का कारोबार करना आज मुसलमानों में भी आम है। यही तो है अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह की आयतों को बेचना चंद दुनियावी फ़ायदों के लिए। अगर बनी इसराइल सच को मान लेते तो उन्हें अपनी चौधराहट छोड़नी पड़ती, जो उन्होंने अपने दीन की दुकान चमकाई हुई थी। लोग उन्हें मौलवी साहब, मौलाना साहब, पीर साहब कहते थे, वो सब दुकानें बंद करनी पड़ती और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर मानना पड़ता। उन्हें तो अपने इल्म का बड़ा गरूर था, अगर इस्लाम कबूल कर लेते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तालिबे इल्म बन के आना पड़ता। यही वजह थी उनके कुफर की, इसी सब से वो बच रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ैया या फत्तकून, दुनियावी नुकसान से ना बचो, सिर्फ मुझसे बचो, सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो। ये थी आयत नंबर 41। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।